यह प्रवचन भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 11 पर 13 मार्च 2007 को नई दिल्ली में श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया।
गोपी जाना बाला भाला धारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जैसे मैंने कहा था मैं गीता पर आधारित थोड़ा उपदेश दूंगा। तो ये श्लोक है भगवत गीता के 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। ते समय अनुकंपार्थम अहम् अज्ञानजम् तमः नशयामि आत्मा भावासो ज्ञानादपेन बश्वता। ओम ज्ञानतिमिरान्दस्य
ज्ञानाञ्जनशलख्या
चक्षुरन्मिलितानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं सावितानेन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं सद्वैतं स्वधूतं वैजना साहित्यं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका कंता राधा कंता नमोस्तुते तप्त कांचना वंश कल्पतव्यश्च कृपा सिंधु भैव परीतानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्ण ये जो श्लोक हमने पढ़ा ये गीता के 10वें अध्याय में प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी ने जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की तो उन्होंने कहा था कि हम सबको गीता और भागवत दोनों का ही अध्ययन करना चाहिए। सुबह के समय इसलिए इस्कॉन के केंद्रों में भागवत का अध्ययन किया जाता है और शाम के समय गीता का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों का पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। आप श्रीमद् भागवतम में देखते हो कि जब परम भगवान श्री कृष्ण अप्रकट हो गए थे तो उनके सनातन साथी अर्जुन जो थे शोक में थे और अर्जुन ने उन घटनाओं का स्मरण आरंभ किया जो कि बहुत एक दृष्टि से असंभव थी पर उनके मित्र के सहयोग से वो सफलता प्राप्त कर सके। इसके पश्चात अर्जुन ने भगवान के भगवत गीता के श्लोकों का स्मरण आरंभ किया। और जब अर्जुन ने भगवान के भगवत गीता के श्लोकों का स्मरण आरंभ किया तो उन्हें ऐसे लगा कि परम भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित हैं, और जो उनकी उदासी थी, शोक था क्योंकि भगवान अप्रकट हो गए थे, वो सब दूर हो गया। उन्होंने ऐसे लगा कि परम भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं। आप सबकी इच्छा है कि आपको ऐसे लगे कि भगवान आपके साथ हैं। तो इस श्लोक के, इस कथा के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान के गीता के संदेश का स्मरण किया, उसी प्रकार हम सबको सदा निरंतर भगवान के गीता के संदेश का स्मरण करना चाहिए। और अगर आप सदा गीता के संदेश का स्मरण करोगे तो आपको ये भौतिक शोक से बचोगे, भौतिक आकर्षण से बचोगे, और आपको ऐसे लगेगा कि परम भगवान जो हैं सदा आपके साथ। तो ये रहना चाहिए हम सबका प्रयास। आप चैतन्य चरितमृत में भी एक बड़ी प्रसिद्ध कथा पढ़ते हो, शायद आपने पहले भी सुनी होगी, कि चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में रुके श्री रंगम के मंदिर में। वहां एक अनपढ़ ब्राह्मण था जो रोज एक ही स्थान में बैठ के पूरे 18 अध्यायों का उच्चारण करता था। ये ब्राह्मण था अनपढ़, पर उसके गुरु ने आदेश दिया था कि रोज बैठकर गीता के 18 अध्यायों का अध्ययन करो। तो वो नियमित रूप से गुरु के आदेश का पालन कर रहा था, पर क्योंकि वो अनपढ़ था, कई श्लोकों का उच्चारण वो ठीक कर रहा था, कईयों का गलत, कई श्लोकों का अर्थ वो समझ जाता था, कईयों का अर्थ नहीं समझ पाता था, और कई लोग उसके पास खड़े होकर उस पर हंसते थे। क्यों हंसते थे? क्योंकि गांव के लोगों को पता था ये ब्राह्मण अनपढ़ है, तो वो कहते थे अरे ये तो दिखावा कर रहा है, श्लोकों का उच्चारण भी ठीक नहीं कर सकता। पर जब भी वो पीछे नहीं हटा, रोज पढ़ते गया, और जब वो गीता के श्लोकों का उच्चारण करता था तो साथ में शुद्ध भक्ति के लक्षण भी प्रकट हो रहे थे, जैसे नेत्रों से आंसू बहना इत्यादि। और चैतन्य महाप्रभु जी रोज उसे देखते थे इसी स्थान पर गीता का उच्चारण करते हुए, और महाप्रभु जी स्वयं भगवान थे, वो पहचान सके ये तो शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट कर रहा है। तो महाप्रभु जी उनके पास गए और पूछने लगे कि गीता में क्या है जो तुम पढ़ते हो और ऐसे लगता है कि आप शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट कर रहे हो। तो उस ब्राह्मण ने अपनी पूरी कथा सुनाई कि किस प्रकार गुरु के आदेश का वो पालन कर रहा है, रोज गीता को पढ़ता है, और हालांकि लोग हंसते हैं, ताना मारते हैं, छेड़ते हैं उसे, जब भी वो विचलित नहीं हो रहा। और उसने कहा कि जब मैं गीता के श्लोकों को पढ़ता हूं और जब मैं भगवान श्री कृष्ण के चेहरे का स्मरण करता हूं तो फिर मेरे आंखों से आंसू बहते हैं और इसी शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उसे गले लगाया और कहा, तुम गीता के असली संदेश को समझ गए हो। तो प्रभुपाद जी इस कथा के तात्पर्य में एक संदेश देते हैं हम सबको। प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे कि ये अनपढ़ ब्राह्मण अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा था, किस रूप से? रोज 18 अध्यायों का उच्चारण करता था, जिसका ये परिणाम हुआ कि परम भगवान स्वयं आए उसे दर्शन देने के लिए। क्यों, कैसे आए? चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। चैतन्य महाप्रभु जी कौन है? स्वयं भगवान है। क्योंकि वो रोज ये नियम पालन कर रहा था तो महाप्रभु जी खुद आए। चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा में और भगवत गीता की शिक्षा में कोई अंतर नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जी खुद आए और इस ब्राह्मण को उन्होंने दर्शन ही नहीं दिया, गले भी लगाया। गले लगाने के बाद 4 महीने उस ब्राह्मण को अपने साथ रखा और 4 महीने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने रोज उसे और गहराई के साथ गीता का संदेश समझाया। क्या सौभाग्य है ना। और ये ब्राह्मण की क्या तालीम थी कि रोज नियमित रूप से वो गीता का अध्ययन कर रहा था। महाप्रभु जी ने अपना दिव्य रूप का दर्शन भी दिया उसे और कहा कि किसी को ये भविष्य में नहीं कहना कि तुमने ये दिव्य रूप का दर्शन प्राप्त किया है। जब चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो एक समय वो एक ब्राह्मण कुर्मा के घर में गए रहने के लिए। कुर्मा ब्राह्मण जो था आप जैसे गृहस्थ आश्रम में था और उसने ये कहा महाप्रभु जी से कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ घर छोड़कर। पर महाप्रभु ने कहा कि घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, जहां हो वहीं रहो पर केवल इन 5 नियमों का पालन करो। और इनमें से एक नियम क्या था? रोज गीता पढ़ो और भगवतम पढ़ो। हमने ये इसलिए कहा है क्योंकि हमारी ये इच्छा है कि आप सब अगर आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन करना चाहते हो तो हमें शास्त्रों का अध्ययन करने की भी आवश्यकता है। हरे नाम सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने भक्ति के 5 अंगों की चर्चा की। कहा पहला तो है कि हमें हरे नाम का उच्चारण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो एक प्रसिद्ध भक्त रामानंद रॉय को मिले दावी नदी के तट पर। रामानंद रॉय अर्जुन के अवतार माने जाते हैं और वो थे दक्षिण भारत के राजपाल और उनके राजा थे महाराज प्रतापरुद्रव। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने रामानंद रॉय से अनेक प्रश्न पूछे। आप कहोगे भगवान क्यों अपने भक्तों से प्रश्न पूछ रहे हैं? किस लिए? भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए। भीष्मदेव जी जब शरीर त्याग रहे थे, भगवान पांडव भाइयों के साथ उनके समक्ष उपस्थित थे और भगवान ने युधिष्ठिर को कहा, पूछो तुम भीष्मदेव से अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न, और भगवान के समक्ष उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने जगाई मदाई को उद्धार का क्रेडिट किसको दिया? किसे? नित्यानंद जी को। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी अनेक प्रश्न पूछे थे रामानंद रॉय से। उनमें से एक प्रश्न पूछा था कि हमें कौन सा गीत गाना चाहिए हमेशा, जिसके उत्तर में रामानंद रॉय ने कहा कि हमें वो गीत गाना चाहिए सदा जिसके द्वारा अब राधा और कृष्णा की प्रशंसा कर रहे हो, उनका गुणगान कर रहे हो, वो कौन से गीत में हो पाता है? महामंत्र के उच्चारण में। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उपदेश देते हुए कहा कि सबसे पहला नियम तो था कि महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो, पर साथ में ये भी कहा कि हमें एक रोज गीता और भागवत का अध्ययन करना चाहिए। गीता के अध्ययन से अज्ञानता दूर होती है, जैसे कि भगवान आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। खैर, यहां तो भगवान इस श्लोक के द्वारा उन व्यक्तियों का वर्णन है जो कि निरंतर 24 घंटे भगवान की सेवा में जुड़े रहते हैं। इस 10वें अध्याय में भगवान ने पिछले 4 श्लोकों में शुद्ध भक्तों का वर्णन किया है। भगवान ने कहा कि जो उनके शुद्ध भक्त हैं, उनका मन 24 घंटे उनकी सेवा में ही रहता है और वो आनंद प्राप्त करते हैं मेरा गुणगान करने में। ये नहीं महसूस करते कि हमें जबरदस्ती कोई भगवान का गुणगान करवा रहा है। और अगर हम प्रेम और भक्ति के साथ उनके सेवा में जुड़े तो भगवान ने गीता में हमें कहा है कि फिर मैं तुम्हें वो बुद्धि दूंगा जिसके द्वारा तुम मुझे समझ सकोगे। भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है और जब भगवान देखते हैं कि हमारे में ये भावना है, श्रद्धा है उनके शरणागत होने के लिए, जब भगवान ऐसी स्थिति में हमें डालते हैं जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल कर सके। भगवद गीता में भगवान ने कहा है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं हर एक के हृदय में विराजमान हूं। और गीता में ही भगवान ने कहा है सर्वस्य चाहम हृदय सानिवेष्टो मातः स्मृति ज्ञानम अपहानम च, कि मैं हर एक के हृदय में विराजमान हूं, मैं स्मरण का कारण बनता हूं और अपोहनम का कारण बनता हूं। स्मरण का अर्थ है भगवान के संदेश के आधार पर जीवन को बिताना, उनका चिंतन करना, उनकी लीलाओं का चिंतन करना, उनके गुणों का चिंतन करना। और अपोहनम का अर्थ है भगवान को भूलना। वैसे भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ में रूप गोस्वामी जी हमें बड़े गहराई के साथ अनेक नियम देते हैं जिनके पालन से आप भगवान के शरणागत हो सकते हो। रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी एक समय एक बड़े प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे। फिर पहले छोटे भाई रूपक गोस्वामी ने अपनी सरकारी नौकरी त्यागी और फिर बड़े भाई ने त्यागी सनातन ने, और चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी गहराई के साथ उन्हें शिक्षा दी प्रयाग अलाहाबाद में और उनको यह आदेश दिया भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए। तो चैतन्य चरितमृत में और भक्ति रसामृत सिंधु में आप इस शिक्षा का अध्ययन कर सकते हो। तो भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है और इस विषय का वर्णन चैतन्य चरितमृत में भी है कि जो सारे जो नियम हैं इनका मूल भाव क्या है, हमें उस स्थिति पर लाना कि आप सदा कृष्ण का स्मरण कर सको और कभी कृष्ण भगवान को भूलो नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रयास करते हैं मुझे समझने के लिए, मैं जो उनके हृदय में विराजमान हूं, मैं उनकी अज्ञानता को दूर करता हूं। कैसे? ज्ञान के प्रकाश के साथ। भगवत गीता के अध्ययन से हमारी अज्ञानता दूर हो सकती है। भगवत गीता की शिक्षा आरंभ होती है इस ज्ञान के साथ कि आपका असली स्वरूप क्या है। जैसे कि आप अगर किसी देश में जाओ, सबसे पहले आपसे क्या पूछते हैं? आपका परिचय। तो आध्यात्मिक जीवन का क ख घ क्या है, ये समझना कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद जी ने कहा है कि पूरे भगवद गीता में दूसरा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है। ठाकुर भक्ति विनोद जी ने अपने तात्पर्य में इस विषय की चर्चा की है, क्योंकि अगर आप ये समझ जाओ कि शरीर और आत्मा में अंतर है, और ये समझ जाओ कि आप इस भौतिक शरीर को कभी भी संतुष्ट नहीं, इंद्रियों को कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाओगे भौतिक कार्यों के द्वारा, तो फिर आप भगवान के शरणागत हो सकते हो। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में एक वैश्य पिंगला की कथा प्राप्त होती है। पिंगला एक वैश्य थी जो कि ये धंधा कर रही थी धन कमाने के लिए और इंद्रिय तृप्ति का सुख प्राप्त करने के लिए। तो एक दिन पिंगला ने अपने आप को बड़े खूबसूरत रूप से सजाया था और वो अपने बरांडे में खड़ी थी। जो ग्राहक, जो भी पुरुष सामने से चल के जाता था, वो प्रयास करती थी उसको आकर्षित करने के लिए, और सुबह से शाम तक कई पुरुष वहां से गुजर के गए, पर पिंगला किसी को भी ग्राहक नहीं बना पाई। तो सारे दिन प्रयास किया, अपने आप को सजाया वगैरह, कोई ग्राहक नहीं मिला। शुरू में तो वो निराश हुई, फिर ये निराशा के द्वारा उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मुझे भौतिक सुख इंद्रिय तृप्ति के बजाय, पुरुषों को संतोष करने के बजाय, मुझे परम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना चाहिए। और फिर उसने ये पाप के धंधे को त्याग कर परम भगवान के शरणागत हुई और असली सुख प्राप्त कर सकी। और जब तक उसके मन में विचार था कि किसी रूप से मैं कोई ग्राहक ढूंढूं, धन कमाऊंगी, इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होगी होगा, जब तक वो निराश और बेचैन थी, तो पिंगला ने कहा कि जब तक हमारे हृदय में एक भौतिक इच्छाएं रहेंगी, आप कभी भी संतुष्टता प्राप्त नहीं कर सकोगे। पर जब आपके मन में एकमात्र ये भाव उत्पन्न हो कि हमें परम भगवान के शरणागत होना चाहिए, फिर जो आपका मन है हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अनेक श्लोकों के द्वारा ये स्थापित किया जाता है क्या कि हम ये समझना चाहिए कि आत्मा और देह में अंतर है। देह है नश्वर, आत्मा है सनातन। आगे तीसरे और पांचवें अध्याय में भगवान बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमें कार्य करना चाहिए, पर किसके लिए? यज्ञातर कर्मणो न्यातर लोकयम कर्म बंधना। कार्य करो, पर वैसा कार्य करो जिसके द्वारा आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सको, या वैसा कार्य करो जिसके द्वारा आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सको। ये नहीं कि भगवान कहते हैं तुम अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागो। जैसे भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, तस्मात् सर्वेषु कलेषु मम मनस्मरणं युद्ध च, कि मुझे मन और बुद्धि अर्पण करते हुए तुम इस युद्ध में लड़ो। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यहां है पूरे गीता का सार कि हम कार्य करें, पर किसके लिए? भगवान की प्रशंसा के लिए। भगवद गीता के ज्ञान को भगवान कहते हैं राजा विद्या राजा गुह्यम। तो आप कहोगे किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि ये है सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है सब ज्ञानों का राजा, किस आधार पर? क्योंकि अगर हम इस ज्ञान को अनुकूल कर लें और इसका उपयोग करें, इसके आधार पर जीवन को चलाएं, फिर आप असली सुख शांति प्राप्त कर सकोगे। भौतिक ज्ञान जो कि हम पाठशालाओं में महाविद्यालयों में प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा केवल हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है शरीर को और सुख कैसे दिया जाए। और चाहे आप कितना भी प्रयास करो, जैसे आज के वातावरण में आप देखते हो कि पहले से भी ज्यादा भौतिक सुविधाएं हैं, पर क्या आप कह सकते हो कि इन सुविधाओं के कारण लोग ज्यादा सुखी हैं? नहीं। तो ये है, भौतिक ज्ञान के द्वारा केवल इस विषय पर बल दिया जाता है शरीर को कैसे सुखी बनाया जाए, पर गीता के ज्ञान के द्वारा आप ये समझ सकते हो कि किस प्रकार से हमें हर कार्य करना चाहिए भगवान की सेवा में। यत करोषि यत दशनाथि यत जहोसि ददासि यत यत तपस्वसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। भगवान क्या कह रहे हैं इस प्रसिद्ध श्लोक में, जो भी तुम करो, जो तपस्या करो, जो दान दो, जो प्रसाद खाओ, जो भी कार्य करो, किसके लिए करो? मेरी खुशी के लिए। भगवद गीता में भगवान ये भी कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयोजती। कई बार लोग सोचते हैं कि शायद भक्ति करने के लिए हमें बहुत धन की आवश्यकता है, ये भौतिक तालीम की आवश्यकता है, तो भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम तुलसी का पत्र, फलम कुछ हो सादा फल भी, कोई भी फल चलेगा, हाँ ये नहीं कि कोई महंगा फल होना चाहिए। पानी तोयम, कहते हैं अगर प्रेम और भक्ति के साथ मुझे अर्पण करोगे तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो ये आवश्यक है कि हम प्रेम और भक्ति को अनुकूल कर पाए, और प्रेम और भक्ति को अनुकूल करने के लिए साधु संगत की आवश्यकता है, शास्त्रों के संदेश के अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि अज्ञानता दूर कैसे होगी ज्ञान के द्वारा, जैसे अंधेरापन दूर कैसे होता है रोशनी के साथ। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, कृष्णा सूर्य समा माया हयांधिकारा, यहां कृष्णा ताहे नहीं माया अधिकारा। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जा गया है इस श्लोक में, जैसे कि जहां रोशनी हो वहां अंधेरेपन का कोई स्थान नहीं, इसी प्रकार जहां कृष्ण भक्ति होगी तो वहां माया का प्रभाव नहीं रहेगा। तो भगवत गीता का निर्णय यह है कि हमें भगवान की सेवा में जुड़े रहना चाहिए। भगवत गीता के दो श्लोक हैं 18वें अध्याय में, जिसमें पूरे गीता का सार प्राप्त हो जाता है। और इस 18वें अध्याय में भगवान ये भी कहते हैं क्या, भक्तिया माम अभिनंदी यवान चास्मी तत्वतः, कि अगर तुम मुझे समझना चाहते हो तो क्या है साधन, भक्ति योग एक साधन है। प्रभुपाद जी भगवत गीता की भूमिका में कहते हैं कि कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि एक और अनुवाद क्यों प्रकाशित हो रहा है भगवत गीता का, इतने लोगों ने अनुवाद किया है। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक अमेरिकन औरत आई थी उनसे पूछने के लिए कि मैं कौन सा गीता का अनुवाद पढूं, और प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं कह नहीं सका कौन सा पढ़ो, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अक्सर अनुवादक अनुवाद में अपने भाव अर्थ को जोड़ देता है, अपने भाव को जोड़ देता है। तो प्रभुपाद जी ने भगवद गीता यथारूप में भगवान के संदेश को यथारूप प्रस्तुत किया है, और बड़े स्पष्ट रूप से 18वें अध्याय में भगवान ने पहले तो यह स्थापित किया कि भक्ति एक माध्यम है जिसके द्वारा तुम मुझे समझ सकते हो। तो कई बार लोग पूछते हैं कि भक्ति का क्या अर्थ, इसका अर्थ है प्रेम के साथ भगवान की सेवा में जुड़ना, भगवान ने हमको ध्येय दिया है, इंद्रियां दी हैं, मन दिया है, वाणी दिया है, इन सब का हमें उपयोग करना चाहिए भगवान के सेवा में। आप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में कथा पढ़ते हो कुबेर के पुत्रों का। कुबेर हैं देवता के खजांची, तो धनी हैं। और आप आज के जमाने में भी देखते हो धनी घराने के बच्चे, उनमें ज्यादा अच्छी आदतें होती हैं बुरी? अच्छी आदतें बहुत कम दिखती हैं। तो कुबेर के पुत्र भी धनी पिता के बेटे थे, गंदी आदतें पड़ गई थी, इतना तक कि एक समय इतने नशे में थे कि जब नारद मुनि जैसे संत भी वहां पहुंचे तो उन्होंने सोचा नहीं कि हमें शरीर को ढक देना चाहिए। तो नारद मुनि जी ने उन पर खास कृपा की, उन्हें श्राप दिया कि तुम पेड़ बन जाओगे, पर आपके दिल्ली या लंदन या न्यूयॉर्क में नहीं है। कहां पेड़ बनोगे? नंद महाराज के आंगन में। तो वैसा श्राप आपको भी मिले तो शायद आप बुरा नहीं मानो। जैसे हमारे कृष्णा बालरा मंदिर वृंदावन में एक तमाल का पेड़ है, आपने देखा होगा जो गए, तो आपको वो पेड़ जो है अत्यंत भाग्यशाली है, सारा दिन राधा श्याम सुंदर का दर्शन प्राप्त करता है। आप तो 5 मिनट 10 मिनट दर्शन लेते फिर भागने की कोशिश करते हो, पर वो पेड़ सुबह से रात तक वहां खड़े रहता है। इसके अलावा हर आरती में वो उपस्थित रहता है। आप एक आरती में जाते हो तो सोचते आपका कोटा हो गया, है ना, पर वो पेड़ मंगल आरती से शाम की आरती तक और सारा दिन क्या करता है? आइंदर प्रभु उनकी सेना का कीर्तन सुनता है कि नहीं? तो बड़ा भाग्यशाली पेड़ था। तो नारद मुनि ने भी श्राप दिया इन दो लड़कों को पेड़ बनने के लिए, पर साथ में एक वर भी दिया। एक वर तो यह था कि नंद महाराज के आंगन में, दूसरा वर ये दिया कि 100 साल के पश्चात उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। देवताओं के 100 सालों के बाद, हमारे 6 महीने उनके 12 घंटे के बराबर बनते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के वचन का पालन करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने भी इतने श्राप दिए, इतना वर दिया था हिरण्यकश्यपु को, जो भगवान ने जब हिरण्यकश्यपु का वध भी किया, सारे जो वर दिए थे उन सब का पालन करते हुए। तो भगवान ने इन दो जो दो पेड़ों को गिराकर इनके अंदर से दो बेटे निकले, कुबेर मनुग्रीवा, तो फिर इन दो लड़कों ने एक बड़ी अच्छी स्तुति की रचना की। उन्होंने कहा, अब से हमारी ये इच्छा है कि हमारे नेत्र सदा आपका दर्शन लें, हमारे कान सदा आपका गुणगान सुने, हमारे पैर सदा आपके मंदिरों में चलकर जाएं। दूसरे शब्दों, हमारा सिर हमेशा वैष्णव के सामने झुके। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा, अब से हमारी इच्छा क्या है कि हम केवल आपकी भक्ति में रहें। तो उसी प्रकार हम सबका जन्म होता है अज्ञानता में, हम पलते हैं अज्ञानता में, पर किसी न किसी रूप से किसी साधु की संगत में आकर हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा सनातन गोस्वामी से, ब्रह्मांड ब्रह्मीत कोनो भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लदा बीच। अनेक जन्म मृत्यु के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे क्या मिलता है? भक्ति का बीज या भक्ति का ज्ञान। जैसे कि आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आप सब बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि किसी न किसी रूप से आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है भक्ति की महिमा के विषय में। और कुबेर के पुत्रों ने अपनी स्तुति में कहा, अब से हमारी ये इच्छा है कि हम इन इंद्रियों का उपयोग करें सदा आपकी सेवा में। तो उसी प्रकार जब हम अज्ञानता में थे तो हमारे मन में ये भाव था भौतिक सुख इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, पर भक्तों की संगत में आकर प्रॉपर जी ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात आपको शिक्षा प्राप्त होती हुई क्या कि आप किसी रूप से मन इंद्रियों को कभी संतुष्ट कर ही नहीं पाओगे। श्रीमद् भागवत में आप एक कथा पढ़ते हो महाराज ययाति की। महाराज ययाति को 10,000 वर्षों के लिए इतनी सुविधा थी इंद्रिय तृप्ति के लिए कि आप इसकी कल्पना सपना इसका सपना भी नहीं देख सकते। और 10,000 साल के पश्चात महाराज ने क्या निर्णय दिया? उन्होंने कहा कि मैं अपनी इंद्रियों को कभी संतुष्ट नहीं कर पाया। उन्होंने कहा आई वॉज लाइक अ लस्टी गोट। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे बकरे का। बकरा जो है कत्ल खाने के बाहर है और अगर उसे भोग विलास इंद्रिय तृप्ति का मौका मिले उसका लाभ उठा लेगा, ये नहीं जानता कि मिनटों में कत्ल खाने में उसकी बारी आने वाली है। तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि आप भौतिक कार्यों के द्वारा कभी भी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए महाराज ययाति ने क्या निर्णय दिया है कि हमें इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए किससे? भगवान के सेवा में। तो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात हमारा भाव क्या होना चाहिए कि हमें इंद्रियों का उपयोग करें सदा भगवान की सेवा में। तो भक्ति का अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करना भगवान की सेवा में। और आगे भगवान गीता में क्या कहते हैं? सर्वधर्मा परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष स्वामी महाशय। भगवान कह रहे सर्व धर्म क्या मेरी शरण में लोग मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। तो हमारा लक्ष्य है कि हम भगवान के शरणागत हों, सदा उनका चिंतन करें, उन्हें नमस्कार करें, उनको प्रणाम करें, उनकी सेवा में जुड़ें। पर भौतिक वातावरण में रहते हुए अब ये भी देखते हो कि माया काफी तेज है। सच है कि नहीं? माया का क्या प्रयास रहता है? सबको विचलित करने के लिए। जब आप साधु की संगत में आते हो तो जब आपको साधु निमंत्रण देते हैं भक्ति के कार्य में जुड़ने के लिए, और जब आप भौतिकवादियों की संगत में रहते हो तो वो आपको निमंत्रण देते हैं उनकी संगत में रहने के लिए। तो भगवान खुद कहते हैं देवेश गुणम आई मम माया दुर्दया। इतना गुरु की माया का विरोध करना कठिन है, जो मेरी शरण में आ जाए वो इसका विरोध कर सकता है। तो भगवत गीता में भगवान हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि हमें उनके शरणागत होना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु जैसे मैं कह रहा था, उन्होंने चैतन्य चतुर्मिता में अनेक नियमों का वर्णन किया है। चैतन्य चतुर्मिता के 22वें अध्याय में महाप्रभु जी कह रहे हैं प्रमाणिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु की शरण लो, गुरु से दीक्षा लो, फिर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ त्यागने की आवश्यकता तो उसे त्यागो, पूछो कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, और अगर कोई त्यागना पड़े तो त्यागो। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को कहा था जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। और भक्ति का मार्ग पर चलो महान आचार्यों की शिक्षा पर आधारित, ये नहीं कि अपना मनमानी कार्य करो और कहो ये भक्ति हो रही है। बड़े स्पष्ट रूप से चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि हमें जो शास्त्र हैं और जो आचार्य हैं उनके मार्गदर्शन के आधार पर ही चलना चाहिए, और उनके मार्गदर्शन के आधार पर चलोगे तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि एकादशी का भी व्रत रखो, महीने में 2 बार एकादशी होती है, एकादशी का व्रत रखो, धाम में रहो या धाम जाओ, धाम का दर्शन लो। सब धाम में जाएंगे रहने के लिए तो बाकी स्थानों में प्रचार कौन करेगा? और आगे ही भारत के धामों में जमीन की इतनी महंगी हो गई है तो अगर आप सब वहां जाओगे खरीदने के लिए तो शायद आप जमीन प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो इसे ज्यादा अच्छा है जहां हो उस स्थान में धान धाम का वातावरण रखो। फिर आगे महाप्रभु ने कहा अपराधों से बचो। अनेक प्रकार के अपराध हम कर सकते हैं और करते हैं। एक है नाम अपराध, जीव अपराध, गुरु अपराध, तो इन अपराधों से बचो। 10 नाम अपराध हैं जिनका हम वर्णन करते हैं रोज सुबह, और आप सब भक्तों को इसका स्मरण करना चाहिए और इससे इन 10 नाम अपराधों के विषय में ज्ञान रहना चाहिए। तो जो नाम अपराध हैं उनसे बचो। नाम अपराधों में एक नाम अपराध है सावधानी से जाप नहीं करना। जब आप जप करने बैठते हो तो मेरा भाव होना चाहिए कि हम बिल्कुल सावधानी से जाप करें। फिर है जीवापराध, फिर वैष्णवापराध। वैष्णवापराध से हमें बचना चाहिए। वैष्णवापराध के द्वारा भक्ति नष्ट हो सकती है। तो अपराधों से हमें बचना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने उपदेश देते हुए कहा कि जिस प्रकार एक सुंदर बगीचा हो और अगर उसमें एक पागल हाथी आ जाए तो क्या परिणाम होता है, पूरा बगीचा जो है नष्ट हो जाता है। इसी खास करके जो गंभीरता से भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनका प्रयास होना चाहिए कि वो अपराधों से बचें। फिर हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, पर शास्त्रों को पढ़ते समय उनका जो असली भाव है उसे समझना चाहिए। ये नहीं कि हम केवल शास्त्रों को पढ़ रहे हैं बड़ा पंडित बनने के लिए या धन कमाने के लिए। आजकल आप देखते हो भगवत कथा एक प्रकार का धंधा बन गया है, लोग भगवत कथा करते हैं धन के लिए। पर हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए इसलिए कि शास्त्रों का जो निर्णय है उसका हम पालन करें और भगवान के शरणागत हों। फिर देवताओं को हम इज्जत देते हैं पर यह स्वीकार करते हैं शास्त्रों के अनुसार कि जब आप कृष्ण भगवान की सेवा करो तो उसके द्वारा जो 33 करोड़ देवता देवियों हैं उनके प्रति जो आपका भार है उसको भी आप चुका रहे हो। भागवतम के 34 स्कंद में नारद मुनि जी उदाहरण देते हैं। नारद मुनि जी कहते हैं प्रचेतस जो थे एक बड़े प्रसिद्ध राजा के पुत्र थे महाराज प्रचिन्नभरी के, तो उन्होंने इतनी दिव्य ऐसी तपस्या की थी जिसके द्वारा भगवान का दर्शन भी प्राप्त किया और नारद मुनि जी ने उन्हें दिव्य शिक्षा दी। तो नारद मुनि जी कहते हैं जैसे कि आप पेड़ के जड़ में पानी डालो तो सब पत्तों सब जगह तक पानी पहुंच जाता है, जैसे कि अगर आप पेट में खाना डालो तो पूरे शरीर में उसका प्रभाव आ जाता है। उसी प्रकार कृष्ण भक्ति के द्वारा जो आपकी अनेक जिम्मेदारियां हैं देवता देवियों के प्रति सबका आप पालन कर सकते। तो जो वैष्णव हैं शास्त्रों की निंदा नहीं करते, देवता देवियों की निंदा नहीं करते, पर भक्ति करते हैं कृष्ण भगवान की। जैसे कि चैतन्य चरितमृत में कहा गया है एकला ईश्वर कृष्ण और सब मृतया। फिर वैष्णव को वैष्णव की निंदा नहीं सुननी चाहिए। जब आप किसी वैष्णव को देखते हो कि किसी और की आलोचना कर रहा है निंदा कर रहा है तो साथ देने के बजाय उस स्थान से आपको दूर हट जाना चाहिए। वैष्णव निंदा करोगे वैष्णव निंदा सुनोगे तो उससे आपकी अपनी भक्ति जो है वो कमजोर हो जाएगी। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने अनेक नियम दिए जिसके द्वारा हम भक्ति के मार्ग में जुड़कर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो भगवद गीता का अगर हम ध्यान से अध्ययन करेंगे नियमित रूप से तो आप देखोगे ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ने से क्या होता है, अगर मान लो आपके पास एक तेज छुरी हो चाकू हो तो उसे ज्यादा आसानी से काट सकते हो। आपकी बुद्धि अगर ज्ञान से भरी हुई होगी तो बड़ी सरलता से आप ये पहचान सकोगे ये कार्य प्रतिकूल है ये अनुकूल है। और जब आध्यात्मिक ज्ञान रहेगा ही नहीं तो आप कैसे पहचानोगे क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है? तो इसलिए हमें बड़े ध्यान से गीता भागवत को पढ़ना चाहिए। जैसे आप ध्यान से पढ़ाई करते हो, इम्तिहान की तैयारी करते हो, उसी प्रकार बड़े ध्यान से हमें इस शिक्षा का अध्ययन करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था, जप करो, महामंत्र का उच्चारण, गीता पढ़ो, साधु संगत का लाभ। साधु संगत का हमें लाभ उठाना चाहिए। आप पढ़ते हो किस प्रकार मृगाणी शिकारी नारद मुनि की संगत से कैसे उसका उद्धार हुआ, और अनेक और उदाहरण हैं किस प्रकार साधु संगत से लोगों के हृदय में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न हुई। तो साधु संगत का लाभ उठाओ, केंद्र में आओ, नामहार भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में आओ, सत्संग में आओ। और आगे उन्होंने कहा, भगवान के आचार्य विग्रह की उपासना करो। भगवान इतने दया दयालु है क्या कि वो अपने आचार्य विग्रह के रूप में प्रस्तुत होते हैं और हम सबको मौका देते हैं क्या उनकी सेवा में जुड़ने के लिए। तो हर व्यक्ति बड़ी सरलता के साथ इन नियमों का पालन कर सकता है। और आप सबसे यह निवेदन है कि आप गीता को, इन शास्त्रों को ध्यान से पढ़िए। प्रभुपाद जी कहते थे कि जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो भगवान देखते हैं कि हम उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर इन ग्रंथों में है क्या? इन ग्रंथों में है भगवान की वाणी, जिसकी आगे व्याख्या महान आचार्यों ने किए हैं और प्रभुपाद जी तात्पर्य में संक्षेप रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो जब इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति मुझे समझने का प्रयास कर रहा है, और फिर भगवान बुद्धि देते हैं क्या जिसके द्वारा हम उन्हें समझ सकें। इसलिए इन शास्त्रों का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए इन ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं, मैं हरे के हृदय में विराजमान हूं, जो वो प्रयास करते हैं मुझे समझने के लिए, मैं ज्ञान के दीपक से उनके अंधेरेपन को दूर कर देता हूं। तो इस ज्ञान की आवश्यकता है। भौतिक ज्ञान के द्वारा केवल आप भौतिक सुख इंद्रिय तृप्ति के विषय में सीखते हो। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा आप सीखते हो क्या कि आपका असली कर्तव्य क्या होना चाहिए। और हरि नाम के उच्चारण से, शास्त्र के अध्ययन से आप ये दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकते हो। भगवान ने क्या कहा, देवेश गुणमाई मम माया दुर्तया। ये त्रिगुणी माया का विरोध करना बहुत ही मुश्किल है, दुर्तया। मामे वामे प्रपद्यन्ते माया मताम प्रतिदे। पर अगर मेरे ही शरण में तुम आओगे तो फिर तुम अपने आप को इसके प्रभाव से बचा सकोगे। तो भगवान की यही इच्छा है, इसलिए वो स्वयं आते हैं, अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। और शास्त्र में अनेक उदाहरण हैं, जैसे हमने महाराज ययाति का उदाहरण दिया, पिंगला का उदाहरण दिया, अनेक और उदाहरण हैं जिनके द्वारा आप ये समझ सकते हो कि आपको क्या कार्य करना चाहिए, किस कार्य से बचना चाहिए। तो कृपा करके इसका लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाए। हरे कृष्ण।